खुशियाँ ही खुशियाँ पाए तेरे प्यार में बाबा, जन्नत हजार तेरे संसार में बाबा, ओ खुशियाँ ही खुशियाँ पाए तेरे प्यार में बाबा, जन्नत हजार तेरे संसार में बाबा, ओ खुशियाँ ही खुशियाँ पाए।
ओम शांति। जिनको भगवान मिला हो उनका चेहरा भी यदि खुशनुमा नहीं होगा तो बाकी किसका होगा? ठीक बात है ना। खुशियों से बाबा ने हमारे जीवन को भर दिया है। अगर हम संगम युग की प्राप्तियों को याद रखें तो खुशियों में और उमंगों में बहुत ज्यादा रहें। गीत भी बहुत अच्छा था। विचार करेंगे सभी और एक सुंदर छोटी सी धारणा अभी अपनाएंगे। खुश रहना है तो ये नहीं सोचना है कि जो मैं चाहूं वही सब करें। सब देख लो अपने जीवन को, गृहस्थ में रहने वालों को आजकल कई परिवारों में समस्या रहती है कि बच्चे हमारी सुनते नहीं। और बच्चे क्या कहते हैं? बच्चे क्या कहते हैं? हमारी माँ और डैडी हमारी सुनते नहीं। सबकी एक ही शिकायत है। कई बाबा के बच्चे कहते हैं बाबा भी हमारी सुनता नहीं, और बाबा भी कहते हैं तुम बच्चे भी तो मेरी सुनते नहीं। ठीक है, सत्य यही है। जितनी हम बाबा की सुनेंगे संसार हमारी सुनेगा। पक्का कर दें सभी, बाबा तो सुनता है और सुनकर मदद भी करता है, पर हमें वो महसूस नहीं होती तो हमें चेक कर लेना चाहिए हमारे संकल्पों में कहां गलती है। संकल्पों की गलती ब्राह्मणों से भी बहुत हो रही है। हमारे संकल्प जितने श्रेष्ठ होते हैं ये हमारी बहुत बड़ी पूंजी है। ऐसा कहें सबसे बड़ा खजाना है, इस पर हमें बहुत ध्यान देना है। बहुत अच्छी तरह सभी चिंतन करेंगे। मैं समझता हूं अब लास्ट क्लास होगी ना बट्टी की। आज आप बहुत गहराई से चिंतन करें। बाबा ने हम सभी को इस सीजन की हर मुरली में याद दिलाया तुम्हारा एक एक सेकंड बहुत मूल्यवान है और तुम्हारा एक एक संकल्प बहुत महान है। बाबा के शब्दों पर ध्यान देना है। समय तो मनुष्य का बहुत कीमती होता ही है। स्टूडेंट्स का स्टूडेंट लाइफ बहुत कीमती है। परीक्षा के पहले का समय उनका बहुत कीमती है। जब परीक्षा दे रहे हैं तब उनका समय बहुत कीमती है। हर व्यक्ति का जीवन का एक एक क्षण बहुत अनमोल है। और ब्राह्मणों का बाबा ने कितनी गुह्य बात कही, एक एक सेकंड तुम्हारा, एक एक वर्ष के समान है। प्रभु मिलन का सुख ले सकते हैं, ऐश्वर्यी होकर अपना श्रेष्ठ भाग्य बना सकते हैं, अपने को ईश्वरीय सुखों से, शांति से, खुशी से भरपूर कर सकते हैं। पर हमारा एक एक संकल्प बहुत महान है। सभी चिंतन करें, मेरे साथ सभी सोचना, मैं धीरे बोलता हूं, सभी विचार करें, मेरा संगम युग का अनमोल समय कैसे बीत रहा है। उलझनों में या ईश्वरीय आनंदों में, सुखों से भरपूर या परेशानियों में, सफलता के वरदान के साथ या कदम कदम पर विघ्नों के साथ, हमारा संगम युग जो प्रभु मिलन का युग है, जो श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त करने का युग है, हम कैसे बिता रहे हैं? लौकिक कार्यों की उलझनों में या बिल्कुल बेफिक्र बादशाह बनकर अपने हाथ में है। मैं हंसी में कहा करता हूं, कोई कोई भाई बहने तो अपने गृहस्थ का और काम काज का बोझ सिर पर इतने लिए रहते हैं। मैं हंसी में कहता हूं, तुम तो इस संसार में ऐसे जीते हो जैसे सारे संसार को चलाने की जिम्मेदारी तुम्हारी ही हो, तो ऊपर वाला क्या करेगा? सोचो सभी, बोझ उठाकर जिए या बोझ बाबा के हवाले करके जिए, ये सद विवेक है। संगम युग पर सबसे बुद्धिमान आत्मा वही है, अटेंशन दें आप, सबसे बुद्धिमान जो अपने चित्त को शांत कर सके, जो इस जीवन का आनंद ले। और इसके लिए हमारा ये जीवन श्रेष्ठ साधनाओं में बीतना चाहिए। मैं एक और बात सुनाऊं आपको, बात अच्छी चलन की भी है। हमारी अच्छी जीवन हो, हमारा व्यवहार और चरित्र सुंदर हो, हमारे बोल सुंदर हों, हमारी भावनाएं कल्याणकारी हों, इससे हमारी बहुत सेवा होती है। अगर हम क्रोध में रहते हैं, अगर हम बात बात में चिड़चिड़ेपन में रहते हैं, इरिटेट होते रहते हैं, अगर हमारे मुख से छोटी छोटी बातों के पीछे गलत बोल निकलते रहते हैं, तो हमारा जीवन, हमारी चाल चलन दूसरों को आकर्षित नहीं करेगी। संगम युग पर सर्वश्रेष्ठ ज्ञान पाकर जिसने अपने बोल को नहीं बदला, समझो उन्होंने अभी कुछ नहीं पाया है। मैं आपको कह सकता हूं कि जिस आत्मा ने ईश्वरीय ज्ञान पाकर अध्यात्म के मार्ग पर चलकर अहंकार को जीत लिया हो, उसने आधी यात्रा तो पूरी कर ली। विचार करेंगे आप, हम में से कुछ भाई बहने ऐसे भी हैं जो बचपन से ही निरहंकारी हैं, उन्हें चाहिए वो अपनी निरहंकारिता का फायदा उठाकर श्रेष्ठ योगी बने, उनकी निरहंकारिता उन्हें भोला न बना दे, बिल्कुल साधारण जीवन न कर दे, महानताओं से भरा हुआ जीवन। तो आज आप सभी चिंतन करेंगे और अपने विचारों को महान करेंगे। सबसे बड़ी चीज है विचारों की महानता। आपको क्लासेज में बताया होगा, बताया हो तो फिर से सुन लें। रोज आधा घंटा सभी को स्टडी में जरूर देना है। ब्राह्मण बनने के बाद श्रेष्ठ ज्ञान का अध्ययन हमारे विचारों को महान बना देता है। अगर हम स्टडी नहीं करते तो छोटी बातें हमारे मन की दिशा को बदलती रहती हैं, हम पर प्रभाव डालती रहती हैं, हमारी खुशी को छीन लेती हैं। चिंतन करें आप, रोज आधा घंटा दे सकती हैं माताएं, स्टडी में आधा घंटा दिया जा सकता है। फिक्स टाइम करो, बातों में संगम युग का अनमोल समय नहीं बीतना चाहिए। खुशी उस मनुष्य को ही बहुत रहती है जो अपनी इच्छाओं को कम करते जाते हैं। सभी अटेंशन दें, सांसारिक इच्छाओं के पीछे भागना। आपको बताया होगा क्लासेज में, धन संपत्ति के पीछे भागना, धन संपत्ति पाकर भी खुश न रहना, ये सद्विवेक नहीं है। मैं एक छोटी सी घटना सुना दूं। किसी का मुझे दो बार फोन आया 15 दिन में ही। इंजीनियर है वो भाई, गृहस्थी है, उसकी तनख्वाह है हर मास की 1,20,000, थोड़ी सी है, लेकिन उसके साथियों की तनख्वाह 1,40,000 है। इस बात को देखकर वो बहुत दुखी है। आज भी बहुत मैंने उसको समझाया, मैंने उसको कहा 1,20,000 तो बहुत पैसा होता है, तुम अपने परिवार को सुखों में रख सकते हो, यज्ञ सेवा में भी लगा सकते हो, लेकिन दूसरे की 1,40 है। इस संसार में बहुत लोग दुखी हैं दूसरों के सुखों से। चेक कर ले आप सभी, पड़ोसी के पास कार खड़ी है, हमारे घर के सामने स्कूटर भी नहीं खड़ा रहता, तो किराए पे लाके खड़ा कर लो, लोग देख लेंगे। सब अपने से पूछें, खुश रहना, संतुष्ट रहना अपने हाथ में है या दूसरों के? अपने हाथ में है। जिसने अपनी खुशी दूसरों के हाथ में दे दी वो कभी खुश नहीं रह सकते। देखो, मैं जो चीज आप सबको सुनाता हूं उन सब का अभ्यास मैंने अपने जीवन में बहुत किया है। मैं सोचता था भगवान को पाकर भी यदि कोई मनुष्य खुश नहीं रहता, भगवान को पाकर भी यदि कोई संतुष्ट नहीं रहता, तो चारों युगों में वो कभी खुश नहीं रहेगा। स्वर्ग में भी दूसरों के बड़े बड़े महल देख के उसको अंदर कुछ कुछ होता रहेगा, भले ही वहां दुख नहीं होता, लेकिन लगेगा इनके बड़े महल हमारा छोटा सा। भगवान को पाकर संतुष्ट आत्मा बनना ही चाहिए। जो इच्छाओं के पीछे भाग रहे हैं उनकी आत्मिक संतुष्टि कभी नहीं होती है। जैसे मैंने बताया इस भाई की बात, मेरे पास पीछे ग्रुप में ज्ञान सरोवर में ऐसी माताएं भी आई थी जो बहुत साहूकार घर की थी, जो भारत के बहुत साहूकार लोग हैं ना, कितने साहूकार थे सुनो आप। माता ने प्रश्न पूछा था, हमारे पास सब कुछ है। मैंने पूछा कितना सब कुछ है? हमें खर्च करने के लिए रोज 50,000 रुपए मिलते हैं, हम बाजार में जाते हैं, सोचते हैं सब कुछ तो है और क्या खरीदें, हमारे पास सब कुछ है। हमारे पास धन संपत्ति भी इतनी है कि हमें भी पता नहीं, लेकिन हमारे अंदर से आवाज आती रहती है तुम्हें कुछ चाहिए। हमें पता नहीं हमें क्या चाहिए, वो तुम बताओ हमें क्या चाहिए, मेरे से पूछते हैं। अब देख लो, जिनको रोज खर्च करने के लिए 50,000 मिलता है, वो भी आत्माएं अंदर से तृप्त नहीं हैं। संतुष्टि मनुष्य के अपने अंदर से उपजती है। एक व्यक्ति अचार के साथ सूखी रोटी खाकर भी आनंदित है, तो दूसरे की थाली में 108 तरह के भोजन रखे हैं, वो तो भी खुश नहीं है। ये अपने ऊपर है। पसंद है संतुष्ट बनाना? देखिए, संगम युग पर याद आया करेंगे ये दिन हम सबको। बाबा ने इसी सीजन में एक मुरली में कहा, देह से न्यारे होने का बहुत सुंदर अभ्यास करो, एक सेकंड में मन को कंट्रोल कर सकें ये अभ्यास करो। सुन लें आप बाबा के वो शब्द, बाबा ने कहा एक सेकंड में क्या से क्या हो जाएगा, मौका नहीं मिलेगा। मैं अभी एक जगह यूपी में गया था, रास्ते में मुझे एक परिवार, जब ज्ञान चर्चा हुई तो अपनी एक कहानी सुना रहा था। बहुत सुंदर बात है, छोटी सी कहानी के माध्यम से। एक बूढ़ी माता ने संकल्प किया हुआ था, मैं अपने पोते के बच्चे को चांदी के चम्मच से जल पिलाकर जाऊं। पोते के बच्चे को जल या दूध पिलाकर जाऊं। पोते को बच्चा हुआ, इस परदादी ने चांदी की चम्मच से उसे दूध पिलाया और दूध पिलाते ही चली गई, सेकंड नहीं लगा। क्या सिखाती है ये बात हमें? कोई भी इच्छा यदि हमें रह जाती है, अंत में वो हमें शरीर में बांधेगी। एक माता का ऐसा ही अनुभव है, वो हमारी पहचान की थी, उसने भी संकल्प किया हुआ था कुछ ऐसा ही। पता नहीं पोते की शादी देख के शादी का रसगुल्ला खा के जाऊंगी। अब देखो, उधर बारात आई थी पोती की और इधर इसने रसगुल्ला खाया और ये गई। अब परिवार के लिए समस्या हो गई, उधर बारात इधर डेड बॉडी, क्या करें? उसको छुपा के एक भूस का जो कोठा होता है ना, उसमें रख दिया कि भाई ये काम पूरा हो जाए पीछे इसका करेंगे। समझ लें सभी, इसलिए बाबा कहते हैं हमारे को अंत में एक के सिवाय कुछ भी याद ना आए। नहीं तो अंत, मान लो किसी चीज में हमारी बुद्धि अटकी है, माताओं ने छुपाकर सोना रखा हुआ है अंदर, रखती है ना माताएं, पेटी में भी, अंदर एक पेटी में, अंदर थैली में, सभी देख लो माताएं। अब शरीर छूटने का समय आ गया और याद आ रहा है कि उसका क्या होगा, तो आत्मा शरीर से निकलेगी नहीं। आप कहेंगे न निकले, इसमें क्या कठिनाई है, लेकिन वो अंतिम समय बड़ा दर्दनाक होगा। उसमें तो सबसे सुखी वही होंगे जो सेकंड में देह छोड़कर वापस गए। इसलिए अब समय तेजी से समाप्ति की ओर चल रहा है। कोई यह मत सोचना समय बहुत सुंदर है, हमारे लिए सुंदर है। 2012 की भी बहुत सारी भविष्यवाणियां हैं ना विनाश के, वैसा तो नहीं होगा जैसा लोग कहते हैं, पर मैंने सुनी एक बात, कुछ बड़े लोगों ने सुनाई कि 2012 के आखिरी सप्ताह में तीन सूरज पता नहीं एक लाइन में आ जाएंगे। अब तीन सूरज कहां से आएंगे ये तो हमें पता नहीं भाई, खंगोल शास्त्रियों ने ये कहा है, वैज्ञानिकों की भविष्यवाणी है। तो धरती पर तीन दिन के लिए अंधकार छा जाएगा, धरती जो घूम रही है उसका घूमना बंद हो जाएगा। और तीन दिन के बाद जब प्रकाश होगा तो धरती रिवर्स घूमने लगेगी, उल्टी। अब क्या ये सब भविष्यवाणियां है, वो तो अभी आ रहा है समय, हम सब देखेंगे। बाबा ने तो कह दिया है कि जो लोग कहते हैं वो सब नहीं होगा, अचानक होगा, किसी के मनचित में नहीं होगा, तब होगा। हम अपनी सुंदर तैयारी रखें। अब मैं आप सबको एक सुंदर तैयारी की ओर ले चलना चाहता हूं। देखिए, ये सभी स्थूल चीजें जो हमें सुख देंगी, जिनका त्याग सुख देगा, खुशी देंगी, पर वास्तविक चीज, हमारी आंतरिक अनुभूतियां हमें संतुष्ट करेंगी। मैं आप सबका दो बातों पर ध्यान खिंचाना चाहता हूं। दो स्वमान, आप अपने जीवन को ऐसा सेट करें, हर एक भट्टी से कुछ अच्छी चीजें सीख कर जाएं, लाइफ स्टाइल, जीवन जीने का तरीका सभी का ऐसा हो कि व्यर्थ संकल्प न चले। मैं कुछ ऐसी बातें आपके सामने रख रहा हूं, उससे चेहरों पर तेज रहेगा, एक अलौकिक आकर्षण रहेगा, उससे बहुत ज्यादा सेवा होगी। पहली चीज जिसका अभ्यास सभी को करना है, बहुत सुंदर एक स्वमान है, आप जानते हैं उसे, मैं एक महान आत्मा हूं। हम देव कुल की महान आत्माएं हैं, सोचो सभी। इस सत्य को हम स्वीकार कर लें, इस पे हमारा चिंतन हो जाए, हम महान हैं, तो हमारे संकल्प कैसे होने चाहिए, हम महान हैं, हमारे बोल कैसे होने चाहिए, हम महान हैं, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमारी भावनाएं कैसी होनी चाहिए, हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए, हम महान हैं। हैं सभी महान? जो जो महान आत्माएं बैठी, हाथ उठाना जरा। शांतिवन में तो सभी महान हैं, घर जाके भी महान रहेंगे। अगर यही प्रश्न मैं तब पूछूं जब आप अपने घर में होंगे तो सब हाथ उठाएंगे ना। हम सभी महान हैं, इसको अपने अंतर मन में समा लें। चलें सभी, बिल्कुल, चाहे आप आंख बंद करें या खोल के करें, अपने सबकॉन्शियस माइंड में, अंतर मन में समा दें, मैं महान हूं। मेरे साथ साथ विचार करेंगे। दो युग मैंने देव कुल में व्यतीत किए, मैं देव कुल की महान आत्मा हूं। स्वयं भगवान ने कहा है तुम महान हो, ये परम सत्य है कि मैं एक महान आत्मा हूं। ले चलें अपने अंतर मन में। इस अंतिम जन्म में मुझे घर बैठे भगवान मिले, मैं कितनी महान हूं। रोज सवेरे सवेरे आंख खुलते ही मेरा प्रभु मिलन होता है, वे मुझे शक्तियों और वरदानों से श्रृंगारते हैं। वे रोज सवेरे स्वयं मुझे पढ़ाने आते हैं, ये सत्य है कि मैं महान हूं। ओम शांति। आप रोज इसी तरह एक बार सवेरे अपने अंदर ये फीलिंग गहराई से भर लेना और दिन में इसको याद करना, सिंपल, मैं महान आत्मा हूं। देखिए, स्वमान के बारे में हमें याद रहना चाहिए। जिस स्वमान को हम स्वीकार कर लेते हैं, उसके सब गुण लक्षण हमारे जीवन में आने लगते हैं। देव कुल की सारी धारणाएं, पवित्रता हमारे जीवन में आने लगेगी। जिनको भी इस जीवन में पवित्रता का मार्ग कठिन लगता हो, वो दिन में कुछ दिन तक, सारे दिन में 5 बार, ज्यादा नहीं, अपने देव स्वरूप को सामने लाना। एक एक मिनट, ये हूं मैं, बिल्कुल देव स्वरूप, सतयुग के पहले जन्म का स्वरूप सामने आ खड़ा हो, ये है मेरा सत्य स्वरूप, मैं ऐसा संपूर्ण पावन हूं। पवित्रता बढ़ती जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, सभी को अपनी शक्तियों को पहचानना है। हम बहुत शक्तिशाली हैं। हम सबसे गलती हो रही है, सभी सत्य को स्वीकार कर लें, कि हम अपनी शक्तियों को भूले रहते हैं। सबसे अधिक शक्तिशाली है शिव बाबा, सर्वशक्तिवान, और दूसरा नंबर किसका है? हमारा, क्योंकि हम हैं कौन? मास्टर सर्वशक्तिवान। कौन है? बोलो मुख से। और क्यों हैं? क्योंकि बाबा ने अपनी सारी शक्तियां हमें दे दी हैं। सब स्वीकार करेंगे, परमात्म शक्तियां मेरे पास हैं, उसकी सभी शक्तियों से मैं संपन्न हूं। रोज आप अपने को एक बार सवेरे ये भी याद दिलाएंगे। मैं एक बात सदैव सुनाता हूं, मैं अपने को भी सुनाता हूं वो बात रोज, जीवन में हारता वही मनुष्य है जो अपनी शक्तियों को भूल जाता है। भूलना नहीं है। दूसरी बात भी सुना दूं, फिर मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। दूसरी बात है, सभी जो यंग लोग भी बैठे हैं यहां, कुमार कुमारियां और यंग भाई बहने, सभी इस बात को बहुत अच्छी तरह धारण कर लें। किसी के भी जीवन में तब से हार प्रारंभ हो जाती है जब उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास समाप्त हो जाता है। समझ लें, आपने सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज कर दिया, आपकी हार के क्षण प्रारंभ हो गए। आत्मविश्वास को खोना नहीं है किसी भी फील्ड में, चाहे माया को जीतने के लिए, किसी कार्य में सफल होने के लिए, आपके लौकिक बिजनेस में, आपके संबंधों को सुधारने में, आत्मविश्वास कम न हो। एक बहुत सुंदर बात याद रख लेंगे, बाबा के महावाक्य हैं, जो आत्माएं मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहती हैं, मैं 4 बातें सुना देता हूं बाबा की, चारों पर आप चिंतन कर लेंगे। जो आत्माएं मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहती हैं, उनके पास विघ्न और समस्याएं आ नहीं सकती। दूसरी बात, सफलता उनके आगे पीछे घूमती है। तीसरी बात, वे संकल्प से ही सब कुछ कर सकते हैं। और चौथी बात, आगे चलकर सारा संसार प्रकृति सहित उनके चरणों में झुकेगा। मोस्ट पावरफुल बातें हैं। आप अपने को तैयार करें, आप इसे एक स्वमान को ले लें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, चलें इसी नशे में बैठकर योग करेंगे। हम सभी शक्तियों से संपन्न हैं, सभी स्वीकार कर लें। कौन है हम सब? कौन है बोलो? मास्टर सर्वशक्तिवान, हर समस्या का हल इस स्वमान के द्वारा आप करना सीखें। आज ही मुझे दो मैसेज मिले बहुत अच्छे। एक तो ये था, एक बॉम्बे की एक माता का लड़का, उसे नौकरी नहीं मिल रही थी, वो चाहता था मुझे इसी कंपनी में सर्विस मिले, बहुत अच्छी सैलरी। मैंने उसको सिखाया था योग आदि, तो उससे इतना होता नहीं था कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। इन दो स्वमान का अभ्यास 108 बार रोज करो। 15 दिन हुए करते हुए आज उस माता का फोन आया कि उसको उसी कंपनी में मनचाही सर्विस मिल गई है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि देखो किसी को सुख मिले। दूसरी भी एक माता का फोन आया, तब मैं जल्दी में था, उसने आधे मिनट में बताया कि हमने आपसे किसी समस्या के लिए पूछा था, आपने ये विधि बताई थी, हमारी वो सभी समस्याएं समाप्त हो गई हैं, 21 दिन में हुई है। तो सभी समझ लें, समस्याएं हमसे अधिक पावरफुल नहीं हैं। समस्याएं कमजोर मन की रचना होती हैं, क्योंकि समस्याएं ऐसी चीज हैं जो मनुष्य की स्थिति को बिगाड़ देती हैं, खुशी को नष्ट कर देती हैं और आगे बाबा में संशय दिला देती हैं। बहुतों को संशय आता है, बाबा हमें मदद नहीं कर रहा है, बाबा ने तो हमें विधि सिखाई है। अब आप डॉक्टर के पास जाओ कि मुझे ये बीमारी है, डॉक्टर ठीक कर दो, डॉक्टर दवाई देगा। आप दवाई न खाएं और कहें डॉक्टर तो हमें ठीक नहीं कर रहा है, चलेगा काम? बाबा ने हमें विधियां सिखाई हैं, अपनी शक्तियों का यूज करो। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हों, आप 21 दिन तक मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं 108 बार इसको याद कर जाओ। एक बार गुड फीलिंग में आ जाना, मैं हूं, तो आपसे शक्तियों के वाइब्रेशंस चारों ओर फैलेंगे और समस्या को समाप्त करेंगे। इसलिए समस्याओं से घबराएं नहीं। देखिए, आप एक छोटा सा उदाहरण ले लें। कुछ लोग एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ते हैं, उन्हें बर्फ के पहाड़ पार करने होते हैं। जैसे जैसे वो राही ऊपर चढ़ेगा, उसको तूफान ज्यादा लगेंगे, लगेंगे या नहीं? कठिनाइयों को ज्यादा फेस करना पड़ेगा, लेकिन वो बहुत अच्छे स्ट्रांग विल पावर में रहते हैं। हमें चढ़ना है, मरना मंजूर, पीछे हटना मंजूर नहीं। हम भी अपने अंदर ये भावना पक्की कर लें, जितने हम ऊंचे उठेंगे तूफान भारी आएंगे, लेकिन हम उन तूफानों से अधिक पावरफुल हैं। आप सभी के घरों में आप देखते होंगे, जो होशियार बच्चे हैं वो हायर कंपटीशन देने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। मैं देखता हूं हमारे कई कुमार IAS क्लियर करने के लिए सालों साल लगे हुए हैं, ज्ञान योग छोड़कर लगे हुए हैं, मैं उनसे प्रेरणा लेता हूं कि एक अच्छी नौकरी पाने के लिए हमारे कुमार कुमारियां रात दिन एक कर रहे हैं, खाना भी छोड़ते हैं, टीवी भी नहीं देखते, तैयारी में लगे रहते हैं। हम जन्म जन्म की राजाई पाने के लिए क्या कर रहे हैं? सोचो, मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है कि इतनी मेहनत यदि हम कर दें तो राजाई हमारी मुट्ठी में, और वो छोटी मोटी राजाई नहीं है, आप जानते हैं वो कैसी राजाई है। तो मेहनत करनी है, करनी है भट्टी से, जो उमंग अपने अपने अंदर भरा है उसको कायम रखना। होता यही है, एक हफ्ता चलेगा फिर संसारिक झंझटों में आके फिर वैसे के वैसे ही, ये नहीं। आप भट्टी में अपने पांच कोई भी सिद्धांत बना लो, पांच डिसिप्लिन में, पांच सिद्धांतों में अपने जीवन को बांध दो। हम भट्टी से जाकर ये करेंगे ही, तो ये भट्टी आपकी जीवन भर चलेगी, नहीं तो सब जानते हैं नशा धीरे धीरे डाउन होता है। पसंद है? कोई भी पांच नियम अपने अपने बनाओ, चाहे रोज मुरली सुनने का, चाहे रोज अमृत वेले योग करने का, चाहे क्रोध से मुक्त रहने का, चाहे स्टडी करने का, चाहे अपने को समय देने का। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम अपने को समय दें, केवल योग के लिए नहीं, आत्मचिंतन के लिए भी। अब मैं दो सुंदर धारणाओं की बातें आपके सामने रख रहा हूं, बहुत सिंपल है। केवल थोड़ा सा ध्यान देने से ये धारणाएं जीवन में आ जाती हैं। कोई भी बात हो जाए उसे जल्दी से जल्दी खत्म करना, बहुत लोगों में आदत होती है, एक बार हो गई एक बात सारा दिन चलाते हैं उसको, जो आएगा उसको यही सुनाएंगे, आज हमारे युगल ने मुझे ऐसे बोला, देखा इसको बोलने की अकल नहीं, आज इसने मुझे ऐसा बोला, मूड ऑफ सारा दिन, वो बोल के खुश सुनने वाले परेशान, है ना? ये सही, बोलने वाला जब बोल के खुश है तो हम क्यों परेशान रहे? सीख लें सभी, बातों को जल्दी से जल्दी खत्म करना, नहीं तो याद रखेंगे जितने संकल्प चल रहे हैं व्यर्थ, हमारी सारी शक्तियां नष्ट हो रही हैं। क्यों बहुत लोगों को अच्छा अनुभव नहीं हो रहा? लोग कहते हैं हम तो रोज सवेरे 3 बजे उठकर योग करते हैं, व्यर्थ संकल्पों में योग की संपूर्ण शक्ति नष्ट हो जाती है। पसंद है ये धारणा? पहले माताओं से पूछता हूं, भाई पीछे बताएंगे। बातों को जल्दी से जल्दी खत्म करना पसंद है? जिसको पसंद है जरा हाथ उठाना, देख लेना। सहज धारणा है, कोई बड़ी बात नहीं है भाई, कोई बात हुई पूरी हो गई, आगे बढ़ो। एक छोटी सी मेंटलिटी बना लें, ये धारणा कर लें कि एक ही बात लंबा समय न चलती रहे। कोई कोई तो एक बात को सालों साल चलाते हैं, कोई तो जीवन भर चलाते हैं, संबंध बिगाड़े हुए हैं। संबंधों को स्वीट बनाना भी, मधुर बनाना भी मनुष्य के अपने हाथ में है। एक माता मुझे अभी फोन कर रही थी यहां आते आते ही, मैं 25 साल से ज्ञान में हूं, सब कुछ छोड़ दिया मैंने, अब अकेली हूं, मां के साथ रहती हूं, लेकिन सभी लोग मेरे से बुरा व्यवहार करते हैं, जीवन भर लोगों ने मेरे से बुरा व्यवहार किया है, मुझे सताया है, क्या उत्तर देना चाहिए? मैं जब समर्पित हो के मधुबन में आया तो एक बहुत अच्छा स्लोगन मिला, सुना देता हूं, मुझे बहुत काम आया। तब तो हमारा यज्ञ बहुत छोटा सा था, पहली पहली डायरी छपी थी एक छोटी सी यज्ञ में, उसमें कुछ स्लोगन लिखे थे, डायरी भी पहली छपी थी। हम जो 12-14 भाई थे सबको एक एक दी गई, उसमें स्लोगन लिखा हुआ था, कोई मनुष्य किसी को तंग नहीं करता, मनुष्य का अपना स्वभाव ही उसे तंग करता है। बहुत काम आई हमें ये बात, हमने स्वीकार कर लिया इसको तभी कि ये संपूर्ण सत्य है। कोई हमें कितना भी तंग करे, हम तंग ना हो तो तंग होने वाला तंग हो जाएगा ना, हो जाएगा या नहीं? एक बहन के जीवन में थोड़ी सी समस्याएं आई, वो बड़ी स्ट्रांग मुझे कहती थी, देखो उसका स्लोगन सुनो, परेशानियां मुझे परेशान करके परेशान होके भाग गई। ये भी तो हो सकता है ना, सब अपने मन को पावरफुल बनाओ। कहने वाले कहते रहें और हम रोते रहें, कहने वाले आनंदित होंगे वाहरे में। कहने वाले पावरफुल हुए या जिन्हें भगवान मिला वो पावरफुल हुए। हम अपनी शक्तियों को पहचाने। तो मैं आपसे बात कर रहा था, मास्टर सर्व शक्तिवान की बात अधूरी रह गई, क्योंकि वैसा टॉपिक है कि बहुत कुछ उस पर कहा जा सकता है एक घंटा। लेकिन मैं ये दूसरी बात पहले बता दूं, पसंद है ना सबको बातों को जल्दी से जल्दी खत्म करना, बढ़ाना नहीं, कोई कितना भी बढ़ाए नो, फुल स्टॉप, आगे बढ़ो। दूसरा एक बहुत अच्छा अनुभव है मेरा, 5 साल का है, बाबा की ये बातें सुनकर कि जो हो रहा है अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा, जो हो गया वो भी अच्छा। आप सब भी कहते हैं ना, कहना तो बड़ा सहज है लेकिन जब हो जाता है तब सबको पता है, तब ये कहना कि बहुत अच्छा हुआ बड़ा भारी काम है। तो मैंने बाबा की मुरली में एक बात सुनी, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर बात, तुम सदैव मुख से यही बोलो कि अच्छा ही होगा। आगे सुनो, तो अगर खराब होने वाला भी होगा वो भी अच्छा हो जाएगा। तो मैंने सोचा क्यों, सोचने की बात है, भगवान वो अच्छा है, भगवान बोल रहा है, खराब होने वाला भी अच्छा हो जाएगा अगर तुम मुख से बोलोगे सब अच्छा होगा। सोचो क्यों, क्योंकि हम इस संसार की महान आत्माएं हैं, हम इष्ट देव देवियां हैं, हम में से कईयों को वरदान प्राप्त हैं बाबा से, हमारे मुख से जो निकलेगा वो सत्य होगा। तो मैंने अपने को समझा दिया, आप भी समझा दें, एक संकल्प कर लिया कि मेरे साथ हर पल अच्छे से अच्छा ही होगा। बिल्कुल समझा दो आप अपने को, अपने सबकॉन्शियस माइंड में भर दो, आने वाले समय में मेरे साथ सब कुछ हर पल अच्छा होगा, तो अच्छा ही होता जाएगा, क्योंकि हमारे हर संकल्प में क्रिएटिव पावर है। सभी जो पढ़े लिखे भाई बहने बैठे हैं, साधारण माताएं भी बैठी हैं, वो समझ लें हमारे हर संकल्प में क्या है, मैंने इंग्लिश का शब्द बोला था, निर्माण करने की शक्ति है। जो हम सोच रहे हैं वो निर्माण कर रहा है हमारा संकल्प। आप सोच रहे हैं कहीं मैं बीमार ना हो जाऊं, कहीं मैं बीमार ना हो जाऊं, सबको कैंसर हो रहा, कहीं मुझे भी ना हो जाए, तो क्या होगा, हो जाएगा। वो संकल्प नहीं करना है जो हम नहीं चाहते, बिल्कुल पक्का कर दो। ये तो मैंने एक उदाहरण दिया, कोई भी, माताओं के बच्चे बिगड़ रहे हैं, वो बार बार सोचती हैं ये तो बुरे संग में चला गया, ये तो बिगड़ गया, अब ये सुधरने वाला नहीं है, बुरा संग है बहुत, ये नहीं, सब अच्छी तरह सीख लें आज से। माताओं को खास मैं कह रहा हूं, बच्चों को बिगड़ता देख बीमार न हो जाएं आप। वो बिगड़ रहे आपने चारपाई पकड़ ली, कौन अच्छा हुआ? दोनों बिगड़ गए ना। आप उनके लिए भावना अच्छी कर लो। ये देव कुल की महान आत्माएं हैं, सब अच्छा हो जाएगा, इसको सद्बुद्धि आ जाएगी। आप समझ लो मैं इष्ट देवी हूं और रोज उसे आशीर्वाद दो मेरे बच्चे को सद्बुद्धि प्राप्त हो, तो आपका आशीर्वाद आपके बच्चे पर तुरंत प्रभाव डालेगा। क्या समझती हैं माताएं? ठीक है, पसंद है? परेशान नहीं हो। दूसरी चीज, बाबा की मुरलियों में हम सब ने रोज सुना है, जो स्वमान में रहते हैं, जो दूसरों को आत्मिक दृष्टि से देखते हैं, उनके बोल में प्रभाव आ जाता है। आप स्वमान में स्थित हो जाओ, मैं इष्ट देवी हूं, ये मेरा बच्चा नहीं आत्मा है, देव कुल की महान आत्मा है, फिर बोलो, फिर आप प्यार से कहेंगे कि बेटा मां न जाना, वो मानेगा आपकी बात। और अगर आपने आदेश दिया वहां जाओगे तो घर में कदम नहीं रखने दूंगा, तो क्या होगा? वो वहीं जाएगा और घर में कदम भी रखेगा, आपके कदम बाहर कर सकता है। आजकल के बच्चे ऐसे ही है ना, आदेश नहीं, रूहानी बल से आप अपने बच्चों का कल्याण करो। वो अब तो आपके बच्चे हैं ना, हो सकता है वो आत्माएं अपने साथ कितने पाप और पुण्य लेकर जन्मी हो, उसका पिछले जन्म का खाता कैसा हो, आपने उसके साथ क्या क्या किया हो, तो इस रूहानियत के साथ आप जीवन जिए, इस तरह आप अपने बच्चों को सुधार सकते हैं। मैंने भाइयों से वो बात नहीं पूछी है, पूछ लूं? जल्दी से जल्दी बातों को खत्म करना स्वीकार है? इसलिए पूछ रहा हूं कि आपको पक्का हो जाए। बढ़ाना नहीं है बातों को, जितना जल्दी खत्म करेंगे देखो क्या होगा, ध्यान से सुनेंगे। बहुत सुंदर बात, ये ड्रामा गतिमान है, चल रहा है ना, सदा सदा चल रहा है। एक घटना आ रही है, जा रही है, दूसरी आ रही है, जा रही है, तीसरी आ रही है, ठीक है ना। आपने एक बात को पकड़ लिया, कन्याएं सब सुन ले जो यंग बैठी हैं, आपने एक बात को पकड़ लिया, हो सकता है उसके बाद कोई सुंदर अवसर आ रहा हो, वो रोक दिया आपने, वो आपसे मिस हो जाएगा। जो बातों को पकड़ के रहते हैं वो सुंदर अपॉर्चुनिटीज को मिस करते हैं, ये ध्यान रखना है। बातों को छोड़ते चलो, सुंदर सुंदर अवसर आपके हाथ में आते जाएंगे। एक बात और ध्यान दें भाई भी और बहनें भी, देखिए संगठनों में एक बड़ी माया दिखाई देती है, कॉमन है, दुनिया में भी कॉमन है, कि दूसरों को आगे बढ़ता देख, दूसरों की उन्नति होता देख, दूसरों को सफल होता देख, हम परेशान होने लगते हैं। मैं थोड़े में बता रहा हूं, एक मिनट में। दूसरों की सफलता को देख, दूसरे की प्रोग्रेस को देख, अगर हम खुश नहीं हैं, अगर हम कमेंट्स कर रहे हैं, इसका अर्थ है हम सफलता का डिसरिगार्ड कर रहे हैं, उस व्यक्ति का नहीं, उस क्वालिटी का, सफलता का। तो वो सफलता हमारे पास कभी नहीं आएगी। जो सफलता को सम्मान दे रहे हैं, जो प्रोग्रेस को सम्मान दे रहे हैं, सफलता उनके पास आ रही है। इस सुख संवाद को आप ध्यान रखेंगे तो बहुत फायदा होगा जीवन में। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैंने आपको कहा अपनी सभी परेशानियों का निदान करें आप इस स्वमान से। आपका चित्त शांत हो जाएगा। दो स्वमान की बात मैंने की, मैं एक महान आत्मा हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, इन दो पर आप ज्यादा काम करेंगे, व्यर्थ संकल्प भी समाप्त हो जाएंगे, जीवन बहुत सुखी हो जाएगा, समस्याएं आपसे दूर भागेंगी। दो लास्ट बात आपके सामने रखना चाहता हूं, ये बात थोड़ी बड़ी है, फिर भी मैं चाहता हूं मैं आपको कहूं, बहुत सारे भाई बहने इनको अभ्यास अवश्य कर लेंगे, आने वाले विनाश के समय के लिए भी और वर्तमान के लिए भी ड्रामा की ये दोनों बातें बहुत सुंदर हैं। हमें इस संसार के खेल को साक्षी होकर देखना है। मैं केवल दो बातें आपको कह रहा हूं, ड्रामा के ज्ञान की यूं तो 10 बातें हम सामने रख सकते हैं, केवल दो। बहुत ध्यान देंगे, भगवानों वाच्य है, जो कुछ इस ड्रामा में हो रहा है वही सत्य है, वही होना चाहिए। सुना सभी ने? हर घटना को इस महावाक्य से तोलें आप, चित्त शांत होने लगेगा। जो कुछ हो रहा है वही, बोलो, वही सत्य है। हम जो चाहेंगे वही होगा, ऐसा कदापि नहीं। जो कुछ हो रहा है वही सत्य है। और सभी अपने लिए भी सोच लें, मेरे साथ जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदार भी मैं स्वयं हूं। अपने को चेंज करेंगे, सब कुछ चेंज हो जाएगा। दूसरों को दोष देने की जरूरत नहीं। दूसरी सुंदर धारणा है, इस ड्रामा में सभी आत्माएं अपना अपना पार्ट प्ले कर रही हैं, ये तो सब जानते हैं, इसलिए यहां किसी का कोई दोष नहीं। दोनों बातों पर सभी काम करें, यहां किसी का कोई दोष नहीं। और अब बस हम समाप्त कर रहे हैं, अपने चित्त को शांत करने के लिए, अपने जीवन में खुशहाली लाने के लिए, अभी यहीं यहीं बैठकर आप उन सब को क्षमादान दे दें जिनसे आप बदला लेना चाहते हैं। हर एक किसी न किसी से बदला लेना चाहता है, और कईयों की ऐसी भावना है जब तक बदला न ले लें उन्हें चैन नहीं मिलता, सुखी नहीं होते। लेकिन बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका है क्षमा कर देना। करेंगे या नहीं, या जब तक बदला नहीं लेंगे मजा नहीं आएगा, क्या विचार है भाइयों का? करेंगे? कर दो। बहने कन्याएं कर देंगे? जिसने भी आपको दुख दिया हो, आपकी मम्मी ने दिया हो, मम्मी भी देती है दुख या नहीं देती हैं? एक बहन आई मेरे पास, बड़ी आयु हो गई 30-32 साल, कहा बचपन से मेरी माँ ने मेरे भाइयों को तो बहुत प्यार किया, आम भी घर में आते थे चुपचाप उन्हें खिला देती थी, मुझे पूछती नहीं थी। मम्मियां ये काम करती है ना बहुत। तो इसके जीवन पर इतना बुरा असर पड़ा हुआ था कि इसकी खुशी समाप्त हो गई जीवन की। ज्ञान में आई वो, अब कहा मुझे बार बार वो सीन याद आते हैं, मां ने प्यार नहीं दिया तो जीवन में रूखापन आ गया है। ये माताएं सुख संपाप करती हैं, बचें आप इससे। और जिनके साथ ऐसा व्यवहार हुआ हो वो अब सबको क्षमा कर देंगे। करेंगे ना? तो चले अब इस क्षमादान के साथ ही हम एक सुंदर संकल्प लेकर कि जितने महान हम हैं, जितना महान बाबा हमें देखता है उतने ही महान अब हम बन जाएंगे। तो इस योग में हम सब को समाधान करें और अपने चित्त को शांत कर दें।